नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। भारत और फिनलैंड के बीच नई दिल्ली में पर्यावरण सहयोग, प्रवासन और आवाजाही तथा सांख्यिकी समेत विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौतों पर हस्ताक्षर। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लद्दाख बौद्ध विहार क्षेत्र में 2 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाले फुटओवर ब्रिज का शिलान्यास किया। समाज कल्याण मंत्री रविन्द्र इंद्राज सिंह ने समाज के वंचित और पिछड़े वर्गों के समग्र विकास को अधिक प्रभावी बनाने के लिए आगामी बजट प्रावधानों पर दिल्ली सचिवालय में विस्तृत चर्चा की। दक्षिण दिल्ली से सांसद रामवीर सिंह विधूड़ी ने कहा, दिल्ली का मास्टर प्लान 2041 जल्द ही लागू किया जाएगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में 26 युवा चिकित्सा पेशेवरों को पुरस्कार प्रदान किए और दिल्ली यातायात पुलिस ने कल होली के दौरान राजधानी में 4000 से ज्यादा चालान काटे। और अब समाचार विस्तार से। भारत और फिनलैंड के बीच आज नई दिल्ली में पर्यावरण सहयोग, प्रवासन और आवाजाही तथा सांख्यिकी सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्तूब के साथ कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। उन्होंने बहुपक्षीय मंचों में सहयोग सहित पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार साझा किए। एक संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज दुनिया स्थिरता और अनिश्चितता के दौर से गुजर रही है।
आज विश्व एक अस्थिरता और अनिश्चितता के दौर से गुजर रहा है। ऐसे ग्लोबल एनवायरनमेंट में भारत और यूरोप दुनिया की दो बड़ी डिप्लोमेटिक पावर्स अपने संबंधों के सुनहरे दौर में प्रवेश कर रहे हैं। हमारा बढ़ता सहयोग वैश्विक स्थिरता, विकास और साझा समृद्धि को नई मजबूती दे रहा है।
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज लद्दाख बौद्ध विहार क्षेत्र में 2 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनने वाले फुटओवर ब्रिज का शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह परियोजना क्षेत्र के लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
वर्षों से जिस डिमांड को हमारे लद्दाख बुद्ध विहार के लोग कर रहे थे, वो कॉलोनी जहां लद्दाख के हमारे भाई बहन वर्षों से यहां रहते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं, एक फुटओवर ब्रिज का डिमांड सालों से चल रहा था। यहां हमारी सरकार के कार्यकाल में यहां के परिवारों की इस मुख्य डिमांड को हम पूरा करने जा रहे हैं। आज शिलान्यास किया है और बहुत जल्द मात्र 6 महीने के कार्यकाल में इसको बनाकर पूरा कर दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री गुप्ता ने बताया कि इस फुटओवर ब्रिज के बनने से लद्दाख बौद्ध विहार और मॉनेस्ट्री मार्केट में आने जाने वाले लोगों को सुरक्षित रूप से सड़क पार करने की सुविधा मिलेगी। उन्होंने बताया कि इस परियोजना से रिंग रोड पर यातायात भी अधिक सुचारू और निर्बाध रूप से चल सकेगा। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इस ब्रिज का निर्माण लद्दाख की वास्तुकला को ध्यान में रखकर किया जाएगा, ताकि ये संरचना न केवल आधुनिक सुविधाओं से युक्त हो बल्कि क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान और परंपरा को भी दर्शाए। उन्होंने कहा कि सरकार सभी समुदायों की संस्कृति और परंपराओं का सम्मान करते हुए उनके विकास और सुविधाओं के लिए लगातार काम कर रही है।
यही कहा कि परिवार लद्दाख से आए जरूर है, परंतु वर्षों से दिल्ली में रहते हुए उन्होंने पूरी तरीके से दिल्ली को ही अपना घर माना है और दिल्ली भी रल मिलकर के इन परिवारों के साथ उनको एक सुविधाजनक रहने का माहौल देना चाहती है, उनको सभी सुविधाएं देना चाहती है। ये फुटओवर ब्रिज इस क्षेत्र की जरूरत थी, इसलिए इसे पूरा किया जा रहा है और उसकी डिजाइनिंग भी इसी तरह से की गई कि यहां के लोगों को कभी ये ना लगे कि दिल्ली में रहते हुए वो लद्दाख से दूर है।
दिल्ली के समाज कल्याण मंत्री रविन्द्र इंद्राज सिंह ने आज दिल्ली सचिवालय में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग से संबंधित बजट बैठक में शिरकत की। बैठक के दौरान समाज के वंचित और पिछड़े वर्गों के समग्र विकास, शिक्षा के विस्तार और कल्याणकारी योजनाओं को अधिक प्रभावी बनाने के लिए आगामी बजट प्रावधानों पर विस्तृत चर्चा हुई। श्री सिंह ने दिल्ली सरकार के संकल्प पर बल देते हुए कहा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समाज के सशक्तिकरण के लिए बनाई गई योजनाओं का लाभ प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने आज स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय को राजधानी के प्राइवेट अस्पतालों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के मरीजों के लिए समुचित इलाज सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। डॉक्टर सिंह ने बताया कि वर्ष 2025-26 से लेकर जनवरी 2026 तक दिल्ली के प्राइवेट अस्पतालों में ईडब्ल्यूएस श्रेणी के अंतर्गत 8 लाख से ज्यादा मरीजों को ओपीडी इलाज की मुफ्त सुविधाएं मिली हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में 26 युवा चिकित्सा पेशेवरों को पुरस्कार प्रदान किए। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि देश में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए युवा चिकित्सकों को करियर के प्रारंभिक चरण में ही सम्मानित करना महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि प्रारंभिक वर्षों में चिकित्सा पेशेवरों को प्रोत्साहित करने से उन्हें उत्कृष्टता हासिल करने और तेजी से विकसित हो रही चिकित्सा व्यवस्था में अपने ज्ञान में निरंतर वृद्धि करने की प्रेरणा मिलती है। चिकित्सा प्रणाली के बदलते हुए स्वरूप के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा कि नई तकनीकों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आगमन से स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन हो रहा है। दक्षिणी दिल्ली से सांसद रामवीर सिंह विधूड़ी ने आज कहा कि दिल्ली का मास्टर प्लान 2041 जल्द ही लागू किया जाएगा। दिल्ली विकास प्राधिकरण डीजीए के उपाध्यक्ष डॉ एन सरवन कुमार के साथ हुई बैठक में श्री विधूड़ी ने बताया कि इस मास्टर प्लान के आने से राजधानी की कई समस्याओं का हल निकलेगा। एक रिपोर्ट।
बैठक में प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ने अधिकारियों को आदेश दिए कि दक्षिण दिल्ली क्षेत्र के सभी डीडीए पार्कों को विकसित करने के साथ साथ सामुदायिक केंद्र को और बेहतर किया जाए। उन्होंने कहा कि बदरपुर क्षेत्र में नहर पार्क क्षेत्र के हरिनगर वार्ड, मीठापुर वार्ड और जैतपुर वार्ड को ओ जोन से हटाया जाएगा। इस दौरान श्री रामवीर सिंह विधूड़ी ने बताया कि दक्षिण दिल्ली के तेखंड गांव की 2 कॉलोनियों में भी मालिकाना अधिकार देने और रजिस्ट्री का काम शुरू किया जाएगा, जिन्हें पहले ध्वस्त करने के आदेश दिए गए थे। बैठक में भाजपा विधायक करतार सिंह तंवर, गजेंद्र यादव और कुलदीप सोलंकी भी शामिल थे। शिवांग की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए विशेष शुक्ला।
दिल्ली नगर निगम के आयुक्त संजीव खिरवार ने आज राजेंद्र नगर क्षेत्र का निरीक्षण किया। इस दौरान श्री खिरवार ने स्थानीय रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन RWA सदस्यों के साथ बैठक करके प्रमुख नागरिक मुद्दों की समीक्षा की। उन्होंने निवासियों के साथ आवारा पशु प्रबंधन, रिज क्षेत्र में अवैध डेयरी और जल भराव जैसी प्रमुख समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की। बैठक में जनता की सुविधा के लिए समय पर समाधान सुनिश्चित करने और नागरिक बुनियादी ढांचे में सुधार पर बल दिया गया। इसके साथ ही RWA प्रतिनिधियों ने क्षेत्र में जल निकासी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए निगम के सक्रिय प्रयासों की सराहना भी की है। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने नेता प्रतिपक्ष आतिशी की फांसी घर जांच पर उनके सार्वजनिक बयानों की आलोचना की और इस बारे में आधिकारिक तौर पर आगाह किया। श्री गुप्ता ने नेता प्रतिपक्ष को भेजे एक औपचारिक पत्र में कहा है कि इस तरह का व्यवहार विधानसभा की विशेषाधिकार समिति के स्वतंत्र और निष्पक्ष कामकाज को कमजोर करता है। श्री गुप्ता ने कहा कि फांसी घर के दावों को मीडिया के बजाय विशेषाधिकार समिति के समक्ष साक्ष्यों के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली स्नातक और स्नातकोत्तर के अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए इस महीने की 21 तारीख को अन्वेषण नामक पहल की शुरुआत करेगा। ये पहल उन विद्यार्थियों के लिए है जो IIT दिल्ली में उच्च शिक्षा प्राप्त करने की सोच रहे हैं। इस पहल के जरिए विभिन्न संस्थानों के प्रतिभागियों को IIT दिल्ली परिसर का दौरा करने और संकाय सदस्यों के साथ साथ वर्तमान विद्यार्थियों से मिलने और बातचीत करने का भी अवसर मिलेगा। दिल्ली जल बोर्ड ने बताया है कि भूमिगत जलाशय और बूस्टर पंपिंग स्टेशन की वार्षिक सफाई के कारण कल और शनिवार को कई क्षेत्रों में जलापूर्ति प्रभावित रहेगी। बोर्ड ने बताया कि कल लाजपत नगर, ईस्ट ऑफ कैलाश, चिराग दिल्ली, मालवीय नगर और जंगपुरा के आसपास के क्षेत्रों में जलापूर्ति बाधित रहेगी। वहीं शनिवार को बदरपुर, भोगल, मदनपुर, खादर गांव और कैलाश कुंज में जलापूर्ति प्रभावित होगी। जल बोर्ड ने स्थानीय निवासियों से पर्याप्त मात्रा में पानी के भंडारण का अनुरोध किया है। आपातकालीन स्थिति में जल बोर्ड के कंट्रोल नंबर 1916 पर फोन करके पानी के टैंकर मंगाए जा सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लागू कर सकते हैं। दिल्ली यातायात पुलिस ने कल होली के दौरान राजधानी में 4000 से ज्यादा चालान काटे। इनमें शराब पीकर वाहन चलाना, गलत ड्राइविंग करना और बाकी यातायात नियमों का उल्लंघन शामिल है। मीडिया से बातचीत में दिल्ली यातायात पुलिस के अपर उपायुक्त दिनेश गुप्ता ने बताया कि कल यातायात पुलिस द्वारा क्षेत्र के सभी चौराहों पर संयुक्त चेकिंग टीमें तैनात की गईं। इसके तहत 1000 से ज्यादा चालान शराब पीकर गाड़ी चलाने पर काटे गए। उन्होंने कहा कि इसके अलावा 3000 से अधिक अन्य चालान भी काटे गए हैं।
कल दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की तरफ से हमने डिटेल एक ट्रैफिक अरेंजमेंट बनाया था होली के लिए, जिसमें हमारे तमाम इंटरसेक्शंस पे और हमारे ज्वाइंट चेकिंग टीम्स थी विद लोकल पुलिस अल्कोमीटर के साथ थी। और इसमें हमने करीब 1204 जो है डंगल चालांस किए कल, और इसके अलावा 3725 चालांस हमने और किए, तो लगभग टोटल 4929 चालान हमने किए। और कोई ऐसा मेजर इंसिडेंट नहीं हुआ और होली का जो त्यौहार अच्छे ढंग से हुआ। प्रोसिक्यूशन मैंने आपको बताया जैसे 4927 टोटल प्रोसिक्यूशन थे, जिसमें 1204 डंगल ड्राइविंग के चालान।
पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच एयर इंडिया ने यात्रियों के लिए एक बड़ी राहत की घोषणा की है। एयर इंडिया ने कहा है कि प्रभावित यात्रियों को बगैर किसी अतिरिक्त शुल्क के अपनी यात्रा की तारीख बदलने या टिकट रद्द करने पर पूरा रिफंड लेने की सुविधा दी जाएगी। ये सुविधा इस साल 28 फरवरी या उससे पहले की गई सभी कन्फर्म बुकिंग्स पर लागू होगी। पश्चिम एशिया, यूनाइटेड किंगडम और यूरोप आने जाने वाली उड़ानों के लिए यह सुविधा इस महीने की 10 तारीख तक की यात्रा के लिए मान्य रहेगी। एयर इंडिया ने पश्चिम एशिया में मौजूदा हालात के बीच अधिक मांग के मद्देनजर टोरंटो, फ्रैंकफर्ट और पेरिस चार्ल्स डी गॉल के लिए अतिरिक्त क्षमता वाली उड़ानों को संचालित करने की घोषणा की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में एयर इंडिया ने बताया कि आज से 11 मार्च तक दिल्ली और टोरंटो के बीच 3 अतिरिक्त उड़ानें संचालित होंगी। वहीं 7 मार्च से 10 मार्च तक दिल्ली और फ्रैंकफर्ट के बीच 3 अतिरिक्त उड़ानें तथा दिल्ली और पेरिस के बीच 1 अतिरिक्त उड़ान भी चलेगी। इस बीच एयर इंडिया एक्सप्रेस संयुक्त अरब अमीरात के रसल खेमा से दिल्ली, कोच्चि और मुंबई को जोड़ने वाली विशेष उड़ानें शनिवार तक चलाई जाएंगी। हरियाणा में आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए संजय भाटिया ने भारतीय जनता पार्टी से, कर्मवीर सिंह बौद्ध ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से और सतीश नंदाल ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपने नामांकन दाखिल किए हैं। नामांकन दाखिल करने की आज अंतिम तारीख थी। नामांकन पत्रों की जांच कल होगी और प्रत्याशी इस महीने की 9 तारीख तक यदि चाहें तो अपने नामांकन वापस ले सकते हैं। और अब बात मौसम की। राजधानी में आज दिन में मौसम सामान्य रहा और धूप खिली रही। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान रहा 34.3 डिग्री सेल्सियस, वहीं न्यूनतम तापमान 18.02 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग के अनुसार कल सुबह मौसम साफ रहने की संभावना है, वहीं कल का अधिकतम तापमान रह सकता है 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम जा सकता है 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास। और अंत में लीजिए सुनिए इस समाचार बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और फिनलैंड के बीच नई दिल्ली में पर्यावरण सहयोग, प्रवासन और आवाजाही तथा सांख्यिकी सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लद्दाख बौद्ध विहार क्षेत्र में 2 करोड़ रूपये से ज्यादा की लागत वाले फुटओवर ब्रिज का शिलान्यास किया। समाज कल्याण मंत्री रविन्द्र इंद्राज सिंह ने समाज के वंचित और पिछड़े वर्गों के समग्र विकास को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए आगामी बजट प्रावधानों पर दिल्ली सचिवालय में विस्तृत चर्चा की। दक्षिण दिल्ली से सांसद रामवीर सिंह विधूड़ी ने कहा, दिल्ली का मास्टर प्लान 2041 जल्द ही लागू किया जाएगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में 26 युवा चिकित्सा पेशेवरों को पुरस्कार प्रदान किए हैं। और दिल्ली यातायात पुलिस ने कल होली के दौरान राजधानी में 4000 से ज्यादा चालान काटे। और इसके साथ ही ये प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।